नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। कहा, ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने के लिए तैयार। श्री सीपी राधाकृष्णन ने देश की 15वीं उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, उनके मार्गदर्शन में संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली और काठमांडू के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा स्थगित। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ किया। नाइजीरियाई नागरिक समेत 3 लोग गिरफ्तार। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाढ़ प्रभावित लोगों का ऑनलाइन इलाज की पहल शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। उन्होंने कहा कि इतिहास में करोड़ों पांडुलिपियां नष्ट हो गई, लेकिन जो बची हैं वे दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति कितने समर्पित थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने विचारों, आदर्शों और मूल्यों से आकार लेने वाली एक जीवंत धारा है।
ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
कल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। इस सम्मेलन ने भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनः जीवित करने और इसे वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में रखने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए प्रमुख विद्वानों, संरक्षणवादियों, प्रौद्योगिकीविदों और नीति विशेषज्ञों को एक साथ लाने का मंच प्रदान किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण तकनीक, मेटा डेटा मानक, कानूनी ढांचे, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
I, Chandravaram Ponnuswamy Radhakrishnan,
do swear in the name of God,
do swear in the name of God,
that I will bear true faith and allegiance,
that I will bear true faith and allegiance,
to the Constitution of India,
to the Constitution of India,
as by law established, and that I will faithfully discharge the duty,
and that I will faithfully discharge the duty,
upon which I am about to enter.
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल तथा नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य और लोकतंत्र को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने श्री राधाकृष्णन की उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक अनुभव और समाज के प्रति समर्पण इस पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार से बेहतर प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में श्री सिरसा ने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा।
दिल्ली में मुझे लगता है कि पिछले 25-27 सालों में पहली बार ऐसे ऐतिहासिक काम हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री जी एक एक विधानसभा के अंदर हो रहे कामों की जानकारी ले रही हैं। नई सड़कें कैसे बिछेंगे, झुग्गी क्लस्टर के अंदर कैसे काम होंगे, पानी की लाइनों से लेकर सीवेज की लाइनें कैसी नहीं बिछेंगी और कितना भी चाहिए पैसा, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस तरह से विकसित दिल्ली बनेगी उसके ऊपर अगर कोई विजन के साथ काम कर रहा है तो वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मैं आज उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ।
इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की बुनियादी समस्याएं जैसे पानी, सीवर, नालियां, गलियां, सड़कें और पार्क को तत्काल हल किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण को काबू करने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत करेगी। सरकार 3,000 से अधिक RWA, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएगी। आज एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इससे अलाव जलाने के मामले कम होंगे और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए लोगों में एक व्यवहारिक बदलाव भी आएगा। दिल्ली के खजूरी चौक पर लंबे समय से बनी हुई यातायात जाम की समस्या को दूर करने की दिशा में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब खजूरी चौक से होकर सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाने वाली बसें सीधे खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से संचालित होंगी। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार और DTC द्वारा उठाया गया ये कदम इस समस्या को काफी हद तक कम कर देगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जन विश्वास खो चुकी कांग्रेस ने राजनीतिक मर्यादाओं की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता का अपमान किया गया और अब AI वीडियो के जरिए वही घृणित कृत्य कांग्रेस दोहरा रही है। ये केवल प्रधानमंत्री की माँ का ही नहीं बल्कि हर माँ की गरिमा का अपमान है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कांग्रेस पार्टी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि AI के माध्यम से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की माताजी का कल्पित वार्तालाप बनाना उनकी हताशा को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2.25 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो चोरी किए गए महंगे मोबाइल फोन की नेपाल में तस्करी करते थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा और मुंबई के अन्य विसर्जन स्थलों से हाल ही में चोरी किए गए 45 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज एक धमकी भरा ईमेल मिला जिससे कोर्ट परिसर में बम होने की बात कही गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने न्यायालय परिसर के गहन जांच की और पाया कि ये धमकी फर्जी थी। दिल्ली पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अदालत परिसर की जांच की है और अब तक ये एक अफवाह ही पाई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी और काठमांडू के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम DTC की बस सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि दिल्ली से काठमांडू मार्ग पर 2 बसें भारत की ओर से और 2 बसें नेपाल की ओर से चलाई जाती थी। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान हालात के कारण एक बस नेपाल में ही रुकी हुई है, लेकिन वह सुरक्षित स्थान पर है। उन्होंने बताया कि हालात सामान्य होने तक इस मार्ग पर बस सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी।
अभी फिलहाल हमने ये रूट को चलना सस्पेंड कर रखा है जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। हमारी बस वहाँ रुकी हुई है और वो बस सही है, सुरक्षित स्थान पे है और जैसी स्थिति सामान्य होगी हम बस को चालू कर देंगे।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों को ऑनलाइन इलाज प्रदान करने की नई पहल शुरू की है। एम्स ने बताया है कि उत्तर भारत में बाढ़ प्रभावित लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 9355023967 जारी किया है। इसके जरिए लोगों को टेलीफोनिक डॉक्टरी सलाह भी दी जा सकती है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कौशल ई लर्निंग और टेली मेडिसिन सुविधा में उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया है। ये भारत में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देश के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दा विंची प्रणाली की स्थापना की गई है। दिल्ली मेट्रो DMRC ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए DMRC के सारथी ऐप पर UPI भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो ने सारथी ऐप के माध्यम से DMRC पे पावर्ड बाय भीम फीचर लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट।
इससे यात्रियों को अब टिकट खरीदने के लिए किसी दूसरे UPI ऐप की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप से यात्री दिल्ली मेट्रो, DTC बसों और नोएडा मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट खरीदने और कार्ड रिचार्ज करने का लाभ उठा सकते हैं। DMRC और भीम वेगा की साझेदारी से सारथी ऐप पर यात्री UPI ID रजिस्टर कर सकते हैं, जिसे यात्री बैंक अकाउंट या रुपे कार्ड लिंक करके तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की हर गली खेल का मैदान बननी चाहिए और हर मंच पर भारत का झंडा लहराना चाहिए। नई दिल्ली में आज एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित खेल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि भारत को दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की बात कही।
मोदी जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। डेवलप्ड कंट्री में भी मोदी जी ने हमें गोल तय करके दिया है कि हमें दुनिया में 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। एक गोल को अचीव करने के लिए 10-year प्लान और 25-year प्लान दोनों हमने तय करना है। ये प्लान ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो भी थोड़े दिनों में देश के सामने आएगा।
सरकार ने PM मुद्रा योजना के अनुमोदन पत्र का दावा करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पत्र को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। इस पत्र में बीमा शुल्क के रूप में 36,500 रुपए के भुगतान पर PM मुद्रा योजना के अंतर्गत 3,00,000 रुपए का ऋण देने का झूठा वादा किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम साफ रहा। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। कहा, ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने के लिए तैयार है। श्री CP राधाकृष्णन ने देश के 15वीं उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, उनके मार्गदर्शन में संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली और काठमांडू के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा स्थगित। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ किया। नाइजीरियाई नागरिक सहित 3 लोग गिरफ्तार। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाढ़ प्रभावित लोगों को ऑनलाइन इलाज की पहल शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।